सनातन गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो ये सब भाव एक एक शब्द के अंदर में छिपते हैं, इसलिए इन सब महापुरुषों के हम लोग ऋणी जाते। मैं क्या कहूँ प्रभु, मैं आपके इस अंग की ही जो विभूति है इसी को नहीं समझ सका, इसी साढ़े तीन हाथ के शरीर के द्वारा आपके मुख में यशोदा जी ने विश्व ब्रह्मांड को इसमें देखा, ये कैसे संभव? आप इसी वृंदावन में केवल वहां जहां पर रास हुआ था बंसी पर असंख्य गोपियां करोड़ों तो उनके जूत थे, जूत कैसे, एक जूत में राधा जी जूतेश्वरी हैं, चंद्रावली जी जूतेश्वरी हैं, श्यामला जी हैं, भद्रा जी हैं, करोड़ों करोड़ों जूत, एक एक जूत की ही जब संख्या नहीं कितनी गोपियां वहां पर होगी, तो उसी बंसी बट के अंदर में कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इसका समाधान नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं। इसी ब्रज में करोड़ों करोड़ों गए हैं, नंदबा की 9 लाख, उनकी 10 लाख, 11 लाख, सब सभी लोग, तो कृष्ण ऐसे गोप गायों को कैसे वृंदावन में एक वन में चरा रहे हैं, कभी मधुबन में चरा रहे हैं, ये कैसे संभव? आपके ये शरीर की बात में नहीं समझ सकता, वाणी की बात रही, वाणी का भी जो रूपी जो वैभव है उसको मैं भी नहीं समझ सकता, आपके वाणी के क्या तात्पर्य है ये मैं नहीं समझ सकता, हमारे स्थूल दिमाग से यह संभव? एक ही आप बात करते हैं उसके हजारों माने होंगे, अर्थ होंगे। घर चली जाओ, घर जाओ, इसका क्या अर्थ होगा? घर जाओ सीधा गोपियां कहेंगे जैसे घर तो ये जहां आप हैं यही तो हमारा घर है, पतियों की सेवा करो, गोपियां कहेंगे जी आप ही तो पत्नी हैं, और कौन पति है जैसे सेवा जो पालन करता है पोषण करता है, वो भी तो पति है। कृष्ण ने एक ही प्रश्न के उत्तर में 9 अर्थ के रूप में 9 9 भाव बताए प्रेम इत्यादि के समय, इसलिए आपकी वाणी का वैभव हम नहीं समझ सकते अपनी तुच्छ बुद्धि से, और मन की तो बात ही इसकी फिर मैं जानता हूं कि आपका मन वाणी और शरीर तीनों एक ही सच्चिदानंद, कोई भेद नहीं, किंतु फिर भी इसमें भेद है, ये सब मेरे समझ में नहीं आया। और क्या, और एक अर्थ किया, न मैं प्रभो, हे प्रभो आप और मैं दोनों भी आपके ये शरीर के द्वारा जो वैभव जो प्रकाश किया, वाणी के द्वारा किया, मन के द्वारा किया, आप भी अपनी लीला कथाओं को नहीं समझ सकते, विशेष करके आपका वैभव कौन है, ब्रज के ब्रजवासी, ब्रजवासी लोगों के संबंध में आप भी पूरा नहीं जानते, कहते हैं कि और भी इससे आगे रह गया, कृष्ण स्वयं बतलाते हैं जैसे अहो भागवन, अहो भागवन नंद गुरु ब्रजव प्रसाद जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर के भी आपको ये मित्र समझ रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं, इनका परम सौभाग्य है, मेरे समझ में नहीं आता कैसे मित्र हम उनके मित्र हो सकते हैं, ये संभव पर उनका ऐश्वर्य देख करके ऐश्वर्य से हमारा प्रेम शिथिल हो जाएगा और उनके माध्यम जी को ग्रहण नहीं कर सकते। ये ब्रजवासियों के जिनके लिए कृष्ण कह रहे हैं न पा रहे हम निर्बद्ध संग, मैं तुम लोगों का ऋणी हूं चिरकाल के लिए, क्यों उनके भाव इतने सुंदर सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, ये कृष्ण के जो बहुत प्रकार के अर्थ वाले शब्द हैं उनसे भी अधिक इनके। कृष्ण ने कहा मैं हरि हूं, दरवाजे खटखटा रहे हैं कृष्ण, राधा जी ने कहा तुम कौन हो, कौन खटखटा रहा, तो कृष्ण कहा जा मैं हरि, तो यहां पर हरि बंदर की कोई जरूरत नहीं, अरे मैं वो हरि नहीं हूं, ओ सिंह है तो सिंह की तो जंगल में रहते हैं, यहाँ पर क्या जरूरत है? अरे वो नहीं, मैं घनश्याम हूं। घनश्याम आप है तो भले आए हैं, यहाँ पर मेघ की क्या जरूरत है? वर्षा की कोई जब कीच हो जाएगी हम लोग फिसल जाएंगे, आप खेतों में जाकर के वर्षा कीजिए जिसमें किसानों को कुछ लाभ हो, कोई वर्षा की जरूरत नहीं। काले में घन श्याम, श्याम घन काले में, यहाँ क्या जरूरत है? अरे वो नहीं, मैं कृष्ण हूं। अरे बाबा भयंकर वस्तु, कृष्ण माने काला सर्प, काले सर्प को यहाँ जरूरत है? दस बेगा कहीं मैंने दरवाजा खोती, आप यहां से आए हैं उसी वन जंगल में चले जाइए। अरे मैं चक्री हूं, चक्र है, मैं चक्र आप धारण करते हैं,
बांधा रहा जहां पर भी गोरे वाले चले जाओ पर
चक्र चक्री हूं। कुम्हारों की कोई जरूरत? चक्री माने होता है कुलाल,
जो चक्का चलाते हैं,
चक्का चलाते हैं। अपनी जीता हमारे घर में कोई शादी वादी नहीं है, चुक्कड़ की जरूरत नहीं है और घड़े की जरूरत नहीं, वो तो जिसके घर में शादी हो उनके घर में आप पधारिए, वहां पर आप बनना दे। इसी प्रकार से जो जो कहारी कर रहे हैं असीमा त्रिराधिका जी अपनी बातों से उनको काट रहे हैं, तो बताओ गोपियों की बातों में कितना माधुर्य और कितने अर्थ और क्या क्या। वर्मा जी कहते हैं कि आपके जो भक्त हैं उनने जो शेष राधा जी हैं उनकी तो बात नहीं, उनकी मैं महिमा नहीं जानता। वो जान सकता है राधा जी की महिमा जब स्वयं ही कृष्ण कहते हैं मैं नहीं जानता। इसलिए आप भी मनसो बपुसो बाचो, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और वाणी के द्वारा आप भी ब्रजवासियों की महिमा को पूरा नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं। क्यों? नौ नुआयमान उनका भाव है गोपियों का, आप अपना भी नहीं जानते हैं। आप अपने मन वचन और तन ये सब की बात संबंध में भी आप उतना नहीं जानते जितना गोपियां जानती हैं, और उनके लिए भी आपका ये तीनों चीज नौ नुआयमान है। इसलिए तीनों का तीनों कृष्ण के तीनों मन वचन के द्वारा, बपू के द्वारा अपने ही मन वचन और बपू का महिमा ज्ञान, फिर गोपियां ब्रजवासियों की तो बात ही क्या, और मैं ही क्या इस विषय को जान। इसलिए प्रभो मैं थक गया, आपकी महिमा का वर्णन किसी भी स्थिति में मैं नहीं कर सकता, जो कहते हैं वो कहते रहे। इसी के बाद में वो कहते हैं अनुजानी अब आज्ञा दी, ये अनंत नदी के समान आपकी महिमा है, अनंत प्रवाहित, अनंत काल से, अनंत एक जगह से अनंत दूरी तक बहने वाली ये नदी है। ये नदी कहाँ से निकली? ब्रह्मा जी ने देखा ये मैं कहाँ से, ये नाल निकला हुआ है कमल का, हजारों वर्ष तक नीचे चलते 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 थक गए, कहाँ जाने कहाँ पहुंच गए, तो अभी उसका आदि नहीं मिला। फिर ऊपर चलने लगे, ऊपर में देखा दिए कमल, उसका आदि अंत उसको कुछ उनको नहीं मिला। उसी तरह से कृष्ण के किसी भी वस्तु का आदि अंत ये ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। इसलिए कहते हैं अनुजानी, ये तो धारा प्रवाह आपकी महिमा है, बलदेव जी भी नहीं, आप भी नहीं जानते अपनी महिमा को, जानते हैं? यशोदा जी के लाड़ प्यार में जब होता है तो भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता, भगवत्ता से तो जाना जाता है। हाथ पकड़ लिया यशोदा जी, उतना से तो हाथ छोड़ा दिया, और यशोदा जी हाथ पकड़ लिया और लठिया दिखला रही हैं, कृष्ण छिप रहे हैं इधर, उनकी मजाल है जो थोड़ा सा हाथ छुड़ा करके चले जाएं। सूरदास ने या किसने कहा जी हाथ छुड़ा नहीं जा रहे हो, बलिहारी तो तब समझे जब हृदय से चले
जाए।
यशोदा जी ऐसे कहें तुम्हें पीट करके दुरुस्त कर दूंगा, देखो तो तुम कहाँ जाता है, अच्छा तुमको बांध दे, तुम्हें बांध दिया ऐसे। देखो गोपी की महिमा बल था ये कृष्ण से मिली, अपना प्रेम ही इनका ऐसा है। इसलिए कहते हैं प्रभु अब आम जान, अब आदेश मांग कृष्ण सर्वतम वेद से सर्वत, आप तो सभी कुछ जानते हैं मेरे अंदर में क्या क्या भावना है। तमेव जगत नाथ, आप जगत के नाथ हैं, जगत से एक वा आपिक, मैंने अपने शरीर को और इस जगत को जो मेरा है जिसमें अहंता है वो मैं आत्मा शरीर, और ममता जहाँ है ये विश्व को मैंने सृजन किया, ये सब आपके चरणों में इसके व्याख्या में दूसरे
अनुजानी मान कृष्ण सर्वांगम वेद सर्वधृत तमेव जगतामिना जगत च एतत् पवाति। सनातन गोस्वामी श्रीमद्भागवत के इस श्लोक को श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना स्तव स्तुति कृष्ण के उपसंहार में अनुजानी अब आप आदेश दें, मैं अपने स्थान पर चलूं, अपने धाम में चलूं। सर्वम तम वेद सर्व सर्वदृक, आप सर्वद्रष्टा है, अणु अणु के भीतर में अंतर्जामी हो, इसलिए आप सभी जानते हैं। मैं जो नहीं जानता अपने हृदय की बात वो भी आप जानते हैं। तमेव जगत नाथ, आप जगत के नाथ हैं, प्रभु हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में अपनी अंधता और ममता दोनों अर्पण करता हूं। पूर्ण शरणागति किए बिना आप ग्रहण नहीं करते पूर्ण रूप में, ऐसा समझकर मैं अपना यह जो शरीर मन और आत्मा ये तीन में अंधता होती है ये तीनों को आपके चरणों में दे रहा है, और हमारा जो कुछ ममतास्पद है मेरा जो कुछ है वो सब आपके चरणों में आता है। मेरा क्या, मैंने ये जगत जो मैंने सृजन किया आपकी इच्छा से ये सब कुछ आपके चरणों में देता हूँ। अब मेरा अभिमान न रहे कि ये मेरा जगत है, आप जगत के नाथ हैं, मैं आप ही की चीज आप ही के चरणों में जगत का नाथ है, इसलिए ये जगत भी तो आपका है ही है, किंतु मेरा जो अभिमान था जो मेरा है ये भी मैंने अभिमान को भी आपके चरणों में इसी के लिए कल व्याख्या आ रहा है। जगत मेरा है, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जैसे ये घर मेरा है, तो घर हमने कहा जैसे नहीं गुरु जी का घर है भगवान का घर है, ऐसे ये जो मेरा ये सप्तलोक से लेकर के ऊपर नीचे में रसातल पताल तक 14 भुवनात्मक जो ये विश्व है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं मेरा है, ये सब कुछ और उनका क्या है, ये सब कुछ आपके चरणों, और मैंने अपने को भी दे दिया, इसलिए बाकी अब कुछ रहा भी नहीं, मैं जब आया तो हमारा जो कुछ है सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं स्तुति के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और उनके प्रकार के प्रभाव से उनके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हुआ। भक्ति जहां आती है साथ साथ में दीनता आती है, सब अहंकार छूट जाता है, इसलिए उनके हृदय में स्वाभाविक दीनता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो भक्ति है और दीनता नहीं है। दीनता होने पर स्वाभाविक भक्ति होती है, स्वाभाविक जहां दीनता आएगी वहीं पर भक्ति है। इसलिए दोनों ये दो नाम अलग अलग हैं किंतु यथार्थतः में एक ही, इसलिए उनके अंदर में उसके पहले उन्होंने बतलाया ना ये आपकी कृपा लेश से ही आपको कोई जान सकता है।
अर्थात
ते देव पदम भुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव, बिना भगवत कृपा के उनकी महिमा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए अब उनमें दीनता आई, दीनता भी आना सहज नहीं है। घर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, छोड़ने का भी माना जाता है। इसलिए वैष्णव लोगों में सब समय दास भावना रहती है, मैं दास भगवान के प्रति प्रभु भावना रहती है। इसलिए अब वो दीन ही हो करके अपनी स्तुति स्तव का उपसंहार यहाँ पर करने जा रहे हैं। उनका जितना भी मान था वो सब दूर हो गया। मैं भगवान के बछड़ों को और सखाओं को चोरी कर लूंगा और चोरी करके छिपा करके उनकी दूसरी लीला को देखूंगा, उनका यह अभिमान था। मैं बछड़ों को चुरा सकता हूँ, सखाओं को चुरा सकता हूँ और तब देखें जो वो क्या करते हैं। भगवान बोध था जो ये भगवान है, किंतु कुछ और लीलाएं देखें और अपने बुद्धि से सोच करके उनको विपत्ति में डाल करके उनकी देखेंगे ये लीला कैसे करते हैं। कुछ कुछ ये भी था जो ये छोटा सा बालक ही भगवान है, ये भी थोड़ा सा संदेह आ गया। जैसे गरुड़ जी को कभी हो जाता है, उनका नाग फांस दे करके राम का, ऐसे इनके अंदर में भी कुछ हो सकता है। इसलिए ये सोचा जैसे इनको चोरी करके रख दें और देखें ये क्या लीला करते हैं। ये इनकी विडंबना है, ब्रह्मा जी की। वो ऐसे ही स्तव स्तुति करते थे, प्रभु आपकी लीलाओं को, मधुर लीलाओं को देखना चाहता हूँ, तो हो जाता है। तो उन्होंने अपने तरफ से ये जो प्रयास किया है ये उनकी गलती। कृष्ण ने उसके पहले ही ब्रह्मा के देख करके, ब्रह्मा के माध्यम बना करके ब्रह्मा को कुछ क्रीड़ाएं करती थी, उनके अंदर में कुछ वासनाएं जगी थी। उनका वो तो आत्मा राम आत्मा काम है, किंतु फिर भी वासना जगी। कैसे वासना जगी? भक्तों की वासना से उनमें वासना जगी। इन भक्तों की जितनी भी गोपियां थी प्रौढ़ा, वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में दर्शन करना चाहती थी, उनको प्यार करना चाहती थी। दूसरा जितनी गाय थे कृष्ण को अपना बछड़ा मान करके, पुत्र मान करके उनको प्यार करना चाहती थी। और ब्रज की जितनी गोपियां थी सब उनसे विवाह करना चाहती थी, कृष्ण को अपना प्रियतम मानना चाहती थी। और भी जानिए कितनी बातें होंगी। कृष्ण ने सोचा कि एक तीर से सभी काम कैसे साधे जाएं, अघटन घटन पटेशी शक्ति के वो प्रभु हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को इसके लिए उनको वहां से जोग माया के द्वारा उनको पकड़ लाया और पकड़ करके उनके द्वारा बच्चों को चुरवाया और उनके द्वारा सखाओं को चुरवाया, और इसके बाद में उनकी इच्छा हुई कि मैं जरा ब्रह्मलोक से घूमा, और उसमें एक महीने का समय लग गया, उनके लिए तो एक मिनट का समय, किंतु एक मिनट वहाँ का जाना आना ही उसके लिए एक वर्ष हो गया। और आ करके उन्होंने लौट करके देखा कृष्ण सखाओं के साथ में और बछड़ों के साथ में वो खेल तमाशा कर रहे, बछड़ों को चरा रहे। उसने देखा जरे ये कहाँ से आ गए, मैं तो बछड़ों को बंद रख दिया था, ये तो कोई जानता नहीं, ये कैसे जान लिया। जान लिया तो वही, अब देखते हैं कि जैसे उधर देखा तो देखा वहां भी बछड़े यहाँ भी बछड़े। उन्होंने कहा जैसे जो असल जो बछड़े हैं वो कौन है, अब उनको पता नहीं लग रहा है कि असल बछड़े वो हैं कि ये हैं, ये समझ ही नहीं सकते। बहुत चेष्टा की देखने के लिए, जो वो नकल वाला हमारा जो पहले असल वाला चुराया था तो वो तो चुरा दिया, और ये देखते हैं ये नए, इन दोनों में कोई एक ही तो असल होगा, कौन नकल होगा, तो नकल कौन है असल, ये बहुत चेष्टा की समझने के लिए। चार मस्तिष्क लगा दिए, वेद उनके मुख से निकलता है किंतु ये इनके समझ में नहीं आया। जब विचार किया तो थोड़ा से इनकी कुछ महिमा मालूम पड़ी तो इनको प्रणाम किया। प्रणाम करते देखा जी सब चतुर्भुज, वहां वाले यहाँ वाले सभी चतुर्भुज हो गए, सब
चतुर्भुज
हो जाएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सबको चतुर्भुज देखा, जो कुछ देखा जहां उनकी दृष्टि गई है सबको देखा, यहाँ तक ही नहीं उसने देखा जैसे अनेक ब्रह्मांडों में ब्रह्मा शंकर सब जितने हैं ये सब उनकी संस्कृति देख करके चकित हो गए, आंख बंद हो गई, आंख बंद होकर के प्रणाम किया और जब उठे तो देखा जी एक ही कृष्ण। ब्रह्मा जी को लाना नहीं पड़ा, वो ये नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी ने फिर वहां से ले आया अभी उन बच्चों के साथ में। इसी बीच में कृष्ण ने किया क्या, सब गोपियों की शादी हुई उस वर्ष में गर्गाचार्य जी के, आज इस एक वर्ष में जितने जो लोग लड़कियों की शादी करेंगे उनके पति विश्व ब्रह्मांड के कर्ता होंगे, अभी नहीं मरेंगे अजर मर रहे हैं, बस सब लोगों ने शादी की थी, वो तो शादी कृष्ण के साथ में होगी और सबकी इच्छा पूर्ण हो गई, एक एक बरस तक बच्चे और ये सब है, बच्चे और बछड़े सब कृष्ण ही बन करके उनकी मैया का ये सब इच्छा भी पूर्ण कर सब प्रकाश है। अब ब्रह्मा को पता चला जैसे ये मैं योग माया के प्रभाव से मैंने ये सब कठपुतली की भांति किया, हमारे ऊपर भी वो है, इसलिए जगत आना, इसलिए आप जगत देना, इसलिए उनके अंदर में भक्ति का विभाग था, और तब ये स्तव करने लगे। अनुजाना ज्ञानी मान कृष्णत्वम सर्व विद से सर्व सर्व दिख सब कुछ जो कुछ है आप जानने वाले। अब इसकी व्याख्या में ये बता रहे हैं जब भक्ति उनके अंदर में आए भगवान, अब आप आदेश दे मैं अपने लोक को चल, मैं जानता हूं मैं कितना निकृष्ट हूं ये भी मैं जानता हूं, आप जानते हैं और अपनी महिमा भी आप ही जानते हैं, मैं उतना कुछ नहीं, मैं कितना निकृष्ट हूं अधम हूं ये भी जानते हैं, और आप कितने उन्नत और आपकी क्या महिमा है आप अधिक जानते हैं, इसलिए मैंने स्तुति में जो कुछ कहा मैं देखता हूं कि उसे कहीं आपकी महिमा है, इसलिए आप आदेश दें। आप तो साक्षात सब वस्तुओं का दर्शन करते हैं, मैं आपकी स्तव स्तुति करने योग्य नहीं हूं। यहां पर अनुजानी ही आप आदेश दें। अब मैं चलूं, यदि कृष्ण ने सोचा अरे अभी तक तू प्रार्थना कर रहा था ये वृंदावन में कहीं भी मैं करुलता गुल्म इत्यादि हो जाऊं और किसी भी ब्रजवासी के चरण की धूलि वहां पर पड़ जाए और मेरे जीवन सार्थक हो जाए। सुतियों ने जिनको नहीं पाया मुकुंद को, गोपियों ने उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया अपने प्रेम से, या ब्रजवासियों ने, इसलिए आप उनके वशीभूत, इसलिए उनमें से किसी का भी गोकुलेवा गोकुल में भी किसी के चरण की धूलि पड़ जाए, मैं पत्थर हो करके भी वहां जन्म ले लूं और गोपी अपने चरणों को वहीं पर धो करके रगड़ करके मैल को भी छुड़ाए, वो भी जीवन मेरे लिए सार्थक है। इसलिए कहते हैं अभी तो तू कर रहा था जी यहां पर होगा और अभी चल पड़ा आदेश मांगने लग गया। हाँ प्रभु, मैं समझ रहा हूं कि मेरे लिए यहां पर रहना अपराधजनक है, जैसे मैंने अपराध कर दिया ना भक्तों के चरणों में, यहाँ लाखों लाखों भक्तों के, लाखों लाखों सखा और बछड़ों के मैंने ये अपराध किया, ऐसे मैं अपराध करने के लिए बाध्य हूं। विशेष करके इस चतुर्भुज शरीर में, चतुर्मुख शरीर में, चार मुख है ना, चारों मुखों से रहने पर यहां पर तो मैं वास करने योग्य ही नहीं हूं। यदि और कोई जन्म होता तो ठीक था, किंतु इसमें मैं वास नहीं कर सकता। क्यों? मेरे लिए थोड़े दिनों के अंदर में भी दूसरा शरीर धारण करना संभव नहीं, क्योंकि मेरी आयु 50 वर्ष की है और 50 वर्ष बाकी है। 50 माने उनके जीवन काल के परार्ध, जिसको जिसमें एक दिन के ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं,
रात में भी ऐसे
तो मनु इंद्र प्रभृति पलट जाते हैं एक दिन के अंदर 14 बार, वो कितना समय। तो वो कहते हैं जैसे मेरी आयु के अंदर में मैं दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकता, वो तो करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मेरे लिए ये संभव नहीं कि ब्रज में मैं रह सकूं। यदि रहूंगा तो मेरा मेरे लिए अपराध की बात होगी, इसलिए मैं ब्रजभूमि में जितने ब्रजवासियों के चरणों में अभिषिक्त नहीं हो सकता। मैंने प्रार्थना की थी तदभूरी भाग्यगमी जन्म किमत वृंदावन में कहीं भी घास या कुछ होकर के गुल्म लता हो जाऊं और किसी भी ब्रजवासी का उनकी चरण भूरी हमारे सिर पर लग जाए तो जीवन के तात हो जाए, किंतु मेरे लिए ये संभव नहीं। क्यों? भूमि चिन्मयी है, ये वृंदावन की भूमि, ब्रजमंडल की भूमि सब चिन्मय सच्चिदानंद में है। पेड़ लता करु गुल्म लता जितने सर्प बिच्छू सभी चिन्मय, हम लोगों के लिए जड़ अथवा ऐसे बद्ध जैसे दिख रहे किंतु है सभी चिन्मय। अभी भी भगवान की लीलाएं होती हैं, साधारण जीव नहीं देख पाते, इसलिए यहां पर कहते हैं
तो इसमें ब्रह्मा का सृष्टि कोई प्राय नहीं है।
मैं फिर भी कहता हूं ब्रजवासियों की मैं क्या महिमा वर्णन करूंगा, मैंने धृष्टता की है उनकी महिमा वर्णन करने के लिए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोक्षाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जिनके सखा किसी के बेटे, किसी के प्रियतम, किसी के प्रभु, इस रूप में यहां पर प्रकट हुए, मित्र के रूप में उन ब्रजवासियों के भाग्य की मैं महिमा चाहता हूं। कल बतलाया था ना जैसे कि एक अर्क, अर्क का जो पौधा होता है अथवा उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है, उसका जितना सौभाग्य है मेरा सौभाग्य नहीं कि ब्रज में ये रहे, उसका जन्म ही है, किंतु हमारा जन्म ऐसा मेरी शक्ति तो नहीं है कि एक किसी भी चीज की मैं महिमा वर्णन कर सकूं। एक धूलि की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं वर्णन कर सकता, संभव है उनके लिए? नहीं, कभी संभव नहीं। किसी भी ब्रजवासी की महिमा का वो वर्णन पूरा नहीं कर सकते। एक ब्रज का नंद बाबा का सेवक है नौकर, वो कृष्ण में गोदी में लेकर के कृष्ण का चुंबन करता है, खिलाता है, और कृष्ण उसको बाबा बाबा या चाचा चाचा करते। ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य होगा? कभी सौभाग्य नहीं। मुझे अब लज्जा आती है कि मैंने ये वर्णन किया, मैंने ये सब जो कुछ किया, मुझे अब लज्जा आ रही है मैंने वर्णन किया। और भी ब्रजवासी लोगों ने आपको वशीभूत कर दिया। जैसे अब किसी ब्रजवासी जो कहते हैं ना, जरा नंद बाबा की जूती लइयो तो आकृष्ण मचलते हुए हंसते हुए सिर पर रख करके दौड़ते दौड़ते गया नंद बाबा की जूती को, तो बतलाओ नंद महिमा क्या है? श्रुति मपरे श्रुतमितरे भारत मन्ने भजंत भव गीता अमी आनंदम वंदे जस्याविंदे परम ब्रह्मा। जिसके आंगन में ये चलते हैं कृष्ण, घुटनों पर चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस नंद बाबा की बलिहारी है, मैं उनके चरण की वंदना करता हूँ। लोग वेदों की वंदना करें, जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी वंदना करें, कोई श्रुतियों की वंदना करें, कोई महाभारत की वंदना करें, और उसके पक्ष से चलें, उनके लिए मेरे लिए दूर से नमस्कार। मैं तो नंद बाबा जो कृष्ण के लिए इतने प्यार, उस नंद बाबा को मैं बार बार पूरा पूरा प्रणाम करता हूं। इसे ब्रजवासियों के अधीन है, जैसा कहते हैं इतने छाछ पर नाच रहे हैं, कठपुतली की था उनको नचा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप ब्रजवासियों को छोड़कर के ऐसे प्रेम में रंगे हुए हैं, उनके प्रेम में वशीभूत ऐसे हैं, एक क्षण भी उनको छोड़कर के दूसरे से आप बातचीत करने का समय नहीं। ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति स्तव की, हाथ जोड़ करके खड़े रहे, स्तव स्तुति करते रहे, कृष्ण उनके तरफ ने देखा नहीं ये कौन है। एक सखा के ऊपर श्रीदाम या सुबल के कंधे पर अपना हाथ रख कर बाएं और दाहिने हाथ से लीला कमल सुना रहे, उनके तरफ ने देखा नहीं, और बच्चे ये चौमा चौमा कर करके उनको चिढ़ा रहे ब्रह्मा जी। तो इस तरह से कहते हैं एक क्षण भी आप ब्रजवासियों को छोड़ करके हम लोगों से कैसे बातचीत करें, हमारी प्रार्थना क्या सुनेंगे? क्यों, हम लोग तो ऐश्वर्य भक्ति के बाद साधक। पहले बतलाया गया आज भक्ति दो प्रकार की, ऐश्वर्यमयी और माधुर्यमयी। गोपियों की ब्रजवासियों की भक्ति प्रेममयी है, वैकुंठ में भगवान की जो का प्रेम और जो सेवा होती है मर्यादामयी है। रामचंद्र जी की भक्ति भी मर्यादामयी है, मर्यादा से बढ़े बंधे हुए हैं। कृष्ण चंद्र उन्मुक्त है, संपूर्ण प्रेम के आधार पर प्रेम से उनकी सेवा होती है, मर्यादा वहां पर उनको बांध नहीं सकती। इसलिए ऐश्वर्य भाव से यदि कोई उनका भजन करता है तो करे, ठीक है, किंतु कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकता है ऐश्वर्यमयी भक्ति से। यह कृष्ण भगवान और उनके प्रति स्तव स्तुति करेगा उससे प्रसन्न नहीं, बल्कि सखाओं के जूठे खा रहे हैं, नंद बाबा खा रहे हैं, कृष्ण को खिला रहे हैं, एक तरफ में दाहिने तरफ में बलदेव जी को रखा है और इधर में कृष्ण नंगे हैं दोनों, और दोनों को अपनी गोदी में बैठा करके एक हाथ से इनको पकड़े हुए हैं, एक हाथ से इनको, और निकाल रहे हैं ग्रास रोटी का टुकड़ा और लगा करके कृष्ण को खिलाते हैं, बलदेव को खिलाते हैं, फिर अपने भी खा लेते हैं, फिर अपने खा रहे हैं, कृष्ण को खिलाते हैं, बलदेव को खिलाते हैं। और इसी में कृष्ण अपना कितना मान रहे हैं, सौभाग्य मान रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जहां पर हम लोग आएंगे वहां पर संकोच होगा उनकी सेवा में, और उसको छोड़ करके उन ब्रजवासियों को छोड़ करके हम लोगों की आज तक जो मेरी भक्ति में वो नहीं आएंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे। इसलिए मैंने जो कुछ प्रार्थना की आज तक जो मेरी प्रार्थना की प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्यों किया, क्यों? उन्होंने तो कहा जब मैं ब्रजवासियों की चरण की धूलि को प्राप्त करने के लिए ब्रज में गुलमलता हो जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है? यह है ना कि उनको प्रभु मान करके ये सब प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी कृपा चाह रहे हैं। ब्रज का कोई भी व्यक्ति, गोपियां, मैया यशोदा जी, नंद बाबा इत्यादि, कृष्ण की कृपा का भी खारी कोई नहीं, बल्कि सभी लोग कृष्ण को आशीर्वाद देने वाले हैं, बल्कि कृष्ण के कृपा के भिखारी हैं। बिना उनके प्रेम के कृष्ण जीवित नहीं रह सकते, ऐसी नर लीला उन्होंने किया। ब्रज में भगवत्ता का भाव कभी कभी दिखाने की चेष्टा की, मुख में ब्रह्मांड दिखाया, किंतु जो सुधा जी को ऐश्वर्य भाव नहीं हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं की। जैसे रामचंद्र जी ने उनको कौशल्या जी को रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, और वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई प्रार्थना करने। देवकी मैया भी उनको प्रार्थना करने लगी, वसुदेव जी करने, किंतु ब्रज का कोई भी व्यक्ति हाथ जोड़ करके उनसे नहीं खड़ा कहेगा या आप प्रभु हैं, जगत के आधार हैं, हमारे ऊपर देखेगा, बल्कि गोवर्धन की पूजा करते हैं, कभी शंकर की भी पूजा कर करके कहते हैं कि हमारा लाला ठीक है। और कृष्ण को वहां के ब्राह्मण सब आशीर्वाद देते हैं, ये लोग भी आशीर्वाद करते हैं। कृष्ण वहां पर भगवान है ही नहीं, रहने पर भी कोई भी ब्रजवासी उनको भगवान के रूप में नहीं, ये इसी को कहते हैं मार्ग। ऐश्वर्य रहने पर भी अथवा ऐश्वर्य नहीं रहने पर भी नर लीला के अनुरूप कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उसको माधुर्य कहते हैं। और जहां पर उनकी जो कि मनुष्य नहीं कर सकता है, नर लीला के ठीक जो नर लीला के अनुसार नहीं लीलाएं उनको कहते हैं ऐश्वर्य। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऐसा ही, इसलिए जहां मैं रहूंगा ब्रजवासियों के साथ में लीला करने में आपको संकोच होगा, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा। हे प्रजानंद, आप तो सभी जानते हैं मैं कैसे यहां रहूंगा, मैं रहूंगा तो ऐश्वर्य भाव आएगा। तो कहते हैं जैसे तुम बिना विचारे ऐसी प्रार्थना क्यों कर दिया कि मैं ब्रज में रहूंगा और त्रिलता गुण में रहकर रहूंगा और इनकी चरण धूलि हमारे सिर पर लगेगी, ऐसा क्यों प्रार्थना किया? ओह, आप सर्वज्ञ हैं, मैंने अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया है आपकी प्रेरणा से किया है, मैंने इसको अपने आप नहीं किया। देखो यहां पर एक विचार है, दुर्योधन, दुर्योधन क्या कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि न धर्मम न च मे निवृत्ति।
क्यों सदा किसी के यथा नियुक्त तथा करोगी,
आप जैसे हमारे हृदय में होकर के नियुक्त करेंगे वैसा ही मैं करता हूं, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, आप जैसा करते हैं वैसा करता हूं। आपने कहा जैसे यह राज्य मत दो पांडवों को, अंदर में प्रेरणा दी इसलिए मैंने नहीं दिया, आपने लड़ाई करने की प्रेरणा दी तो मैंने लड़ाई किया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमारे इसमें दोष और कुछ नहीं, और सब आगे का चरण हमको याद नहीं आ रहा।
तदा हि सिद्धेश हिरिस्थितेन यथा नियुक्तसि तथा करोमि,
इसके बाद इसलिए जो कुछ भी मैंने किया आप ही का करना है, इसलिए मैंने जो कुछ किया आपने प्रेरणा किया, ऐसा कौन कहता है? और अर्जुन क्या कह रहे हैं? नहीं,
जितनी अच्छी बातें हैं मैं आपने की आपकी प्रेरणा से, अच्छा यदि दोष है तो मेरा दोष है, भक्तों का ऐसा विचार होता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जगत तो मैंने किया, जगत की रचना आपकी प्रेरणा से किया, आपकी शक्ति से किया, आप ही जगत के नाथ हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। किंतु दोष जो हुआ, मैंने आपकी परीक्षा ली, ये मेरा दोष है, भक्तों का ऐसा विचार होता है। भगवान करते हैं, हम लोग जो कुछ करते हैं सोचते हैं कि भगवान ने प्रेरणा दिया, हमने किया, हमने कुछ अच्छा बुरा नहीं किया, जो कुछ हुआ ये प्रभु ने किया। इसी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि देखिए आप जैसा प्रेरणा किया वैसा तो मैंने किया, ये भक्त भी मानते हैं, जैसा वो प्रेरणा देते हैं करते हैं, किंतु कर्ता का अभिमान नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने किया मान लिया, प्रेरणा देकर के कहा है, और रहे जो मैंने किया तो उसका कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा। यदि कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही दुर्योधन के द्वारा ये सब कुछ कराया, जितनी द्रौपदी का नंगा करवाया जाना, भीम को विष का लड्डू खिला करके उसको मार डालने की चेष्टा, लक्षा गृह में उनको जला भस्म करके जला देने की क्रिया, ये कृष्ण ने ही यदि किया है, कृष्ण ने प्रेरणा दी वो कह रहा है, इसलिए मैं इसका फल भोगी हूं। किंतु फल किसको भोगना पड़ा? कृष्ण को भोगना पड़ा ना दुर्योधन को? क्या अंत में क्या गति हुई इसको भोगना पड़ा? जब रणभूमि में गिरा और एकदम भीम के द्वारा जंघे और उसके सब तोड़ दिए गए और रणभूमि में पड़ा हुआ है, अब ऐसी गदा करके अभी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है गिद्धों से, ये क्यों हुआ?
कर्ताभिमान पहले से,
ये कर्ताभिमान जो मैंने किया। अच्छा ठीक बात थी, जैसे सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि जो ऋषि महर्षि लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब प्रभु की इच्छा से हुआ, किंतु उसको मान लेते हैं कि प्रभु ही है, मैं तो कठपुतली हूँ, मेरे द्वारा ये सब हो रहा है, किंतु कृष्ण का है, इसलिए इसमें कर्ता का अभिमान नहीं होने से उनको फल नहीं होता। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, लाखों लोगों को मारा, भीम ने भी मारा, उनको फल नहीं भोगना पड़ा, किसके लिए? क्यों? प्रभु मैं आपका दास हूं, आप जैसा आदेश कर रहे हैं, जैसा प्रेरणा दे रहे वैसे मैंने किया। उसी तरह से प्रभु के ऊपर में कर्तृत्व आरोप कर देने पर, अपने में कर्ताभिमान हटा देने के बाद में फिर उसका फल भोग नहीं होता। कृष्ण सभी करते हैं किंतु कुछ नहीं करते, क्योंकि कर्ता का अभिमान नहीं। कहा ना गीता में बदला है, मैं सब कुछ करता हूं कुछ नहीं करता, क्यों? अभिमान। दुर्वासा ऋषि को की कथा आप लोगों ने सुना होगा, जमुना में बाढ़ आई और उस बाढ़ में गोपियों ने कहा कि आज दुर्वासा ऋषि से हम लोगों को मिलने जाना है, आज उनको खिलाना है, आज कोई त्योहार है, भर भर थाल करके मालपुए इत्यादि बनाई और जमुना के किनारे में गई, देखा कि कोई नाव तक नहीं चल रही है, बड़ी तीव्र धारा है, बाढ़ है। उन्होंने सोचा भाई कैसे पार करूं, इतने में कृष्ण मिल गए। कृष्ण से कहा भाई कोई पार करने की व्यवस्था तो करो। उन्होंने कहो जो कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है, आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो हम लोग पार कर गए, रास्ता जमुना नदी दे दी उस पर पैदल हम चली, बस साथ ही साथ जमुना के ऊपर में इतना कह करके और झट पार हो गए। जब उधर गई तो उनको खिलाया खूब, लाखों गोपियां ले गई थी खिलाने के लिए, खा करके जब बेकार दिए तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब कैसे उस पार जाना है, कैसे जाए, तो उस पार से कैसे आए? तो कृष्ण ने ऐसे कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, यदि ऐसा कह करके और तुम लोग पार हो गई, पार हो जाओ। तो तुम कहना जिसे यदि विषम दुर्वासा ने आज तक कुछ खाया ही नहीं हो तो उनकी तपस्या के बल पर हम पार हो जाए। उन्होंने जमुना से जाकर के कही और पार हो गई। उसी समय में गोपियों ने पूछा
अरे लबार झूठे, तुम्हारा गुरु भी झूठा, तुम भी झूठे।
जवान गुरु कहाँ चला?
वो कहता कि मैंने आज तक स्त्री का मुख नहीं देखा, कभी स्त्री से कोई बात संपर्क नहीं, और तुम कहते जो खाया नहीं, हमारा सब कुछ डकार गए। उन्होंने बतलाया दुर्वासा जी, कृष्ण सब कुछ करते थे, कुछ नहीं करते, क्योंकि करता था भी मैं, और मैं सब कुछ खाया भी, किंतु हमने कुछ भी नहीं खाया। तो गाया कहाँ, गया कहाँ, करता का भी मैंने, ये सब प्रभु को मैंने अर्पण कर दिया, प्रभु के पास में चला गया। ऐसा जिसका हो तो ठीक है, कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं प्रभु आपने जो कुछ प्रेरणा दी, मैंने कहा इसका श्रेय मेरे ऊपर में नहीं, इसके ऊपर में श्रेय है ये जो कुछ हमने कहा अच्छा या बुरा, ये सब आपकी प्रेरणा से हुआ है। यहां पर गुण दोष का जो प्रेरक है या चैत्य गुरु के रूप में वो है, किंतु दोषों के करने वाले नहीं, क्योंकि भगवान मंगल स्वरूप है, सत्य काम है और सत्य की जोनी है, त्रि सत्य है, ऐसा देवताओं ने भी उनको माना है। सत्य जोनी निहितम च सत्य, इसलिए कृष्ण सत्य स्वरूप है, उनमें असत्य और ये सब चीजें आ नहीं सकती हैं, जो देखते हैं उनका वो भूल है। इसलिए कहते हैं जो जो कुछ मैंने अच्छी बातें कही हैं वो आपकी प्रेरणा से ही मैंने कही हैं।